म्यांमार में दशकों में पहली बार एक स्वतंत्र चुनावों में चुने गए सांसदों के शपथ ग्रहण को कुछ हलकों द्वारा म्यांमार में एक नए युग का उदय माना जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के बर्मी समुदाय में कम से कम एक व्यक्ति है जो एक बार फिर उम्मीद से भविष्य को देख रहे हैं। तो इस विषय पर पेश है ये रिपोर्ट। डॉक्टर मिंट चो सिडनी में अपने अपार्टमेंट से म्यांमार के संसद के सीन्स देख रहे हैं। सिडनी में स्थित बर्मा ऑफिस में नोबेल पुरस्कार विजेता ऑंग सान सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी या एनएलडी के समर्थक का कहना है कि उनकी मातृभूमि में एनएलडी सांसदों द्वारा संसद की शपथ ग्रहण को देखने के लिए वो पूरे जीवन इंतजार कर रहे थे।
Yes, this is a very exciting scene in my life because the parliament is filled with civilian parliamentarians, not former generals, genuine civilian politicians.
म्यांमार में 1990 के चुनावों में ऑंग सान सू ची की एनएलडी ने 80% मत जीते थे, लेकिन सेना ने इन परिणामों को रद्द किया था, जिससे म्यांमार फिर सैनिक शासन में आ गया। डॉक्टर चो का कहना है कि उन्होंने म्यांमार और थाईलैंड के बीच जो जंगल वाली सीमा है वहां बर्मी सेना से लड़ते हुए 10 साल गुजारे। फिर 1998 में भागकर वो अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि वहां सेना कभी ना कभी कुछ पावर छोड़ेगी, लेकिन जैसे वो इन सांसदों को अपनी सीट लेते देखते हैं उनके आशावाद में थोड़ी सतर्कता भी है।
Optimistic, very, you know, carefully, very cautiously, because the Burmese political situation is very unpredictable. So, as far as I learned from my past experience, sometimes we didn't expect that would happen, but then happened.
नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने पिछले साल हुए चुनावों में जितनी सीटों पर चुनाव हुए थे उसमें से 80% सीटें जीती, लेकिन संसद में अभी भी 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं और मुख्य मंत्रालयों पर भी सेना का नियंत्रण रहेगा। इरवादे पब्लिशिंग ग्रुप म्यांमार में सैनिक शासन के लंबे समय से आलोचक रहे हैं, जो एक्सपैट बर्मीज कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित किया गया है। क्वे ज्वा मो इरवादे मैगजीन के अंग्रेजी संस्करण के मैनेजिंग एडिटर है। उन्होंने कहा,
I think as long as the military appointees are sitting in the parliament, the NLD government cannot govern effectively.
लेकिन राजधानी यंगून में एनएलडी के प्रतिनिधि नेम्यो हेटेट आशावादी हैं कि अंततः नई संसद पूरी तरह से नागरिक शासन ला सकती है।
So we are the new. This parliament is, I think, better than first one.
Right.
We can do more. We can try more, and we can try the best.
लेकिन डॉक्टर मिंट चो कहते हैं कि एनएलडी अभी तक उस स्थिति में नहीं है कि वो सेना के सहयोग के बिना शासन कर सके।
So the NLD government cannot solve the problem alone because, as I said you before, Defence Ministry, Interior Ministry and the Border Affairs Ministry under the control of Military Chief. So Aung San Suu Kyi, ethnic leaders and the Military Chief have to work together, have to collaborate, you know, very carefully. To achieve long-term peace and national reconciliation.
म्यांमार की संसद को मार्च में तय करना होगा कि जा रहे नेता थेन सेन की जगह नया राष्ट्रपति किसको चुना जाए। सुश्री सू ची 2008 में सेना द्वारा बनाए गए नए संविधान के प्रावधानों के तहत फिलहाल राष्ट्रपति नहीं बन सकती। तो म्यांमार में परिस्थितियों के बारे में और जानकारी के लिए हमने म्यांमार से जुड़े मामलों के विश्लेषक और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में रिसर्च फेलो डॉक्टर राहुल मिश्रा से बात की।
देखिए, अगर हम इतने साल से जो लोकतंत्र के लिए एक मुहिम चल रही थी और म्यांमार में मिलिट्री हुंटा का जो रूल था उसके हिसाब से एक जो मैक्रोस्कोपिक पिक्चर देखें तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि एनएलडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनके खुद के स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि उनको खुद यकीन नहीं हो रहा है कि ये वाकई में परिवर्तन हो चुका है और एनएलडी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। 1 फरवरी को इनका पहला सेशन हुआ जिसमें सेरेमोनियल तरीके से सारे लोग जो है आके उन्होंने सदन को ज्वाइन कर लिया। तो अगर हम ये देखें कि डेमोक्रेसी का जो एस्टेब्लिशमेंट है म्यांमार के अंदर वो बिल्कुल हो गया है, लेकिन एक फंक्शनल लेवल पे जो ऑन द ग्राउंड अगर देखा जाए तो अभी बहुत सारे परिवर्तन होने हैं। जैसे कि जो की मिनिस्ट्रीज हैं वो आंग सान सूची की पार्टी को नहीं जाने वाली है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे जो मेजर डिपार्टमेंट मेजर मिनिस्ट्रीज है उनके पास नहीं होंगे। और ये सवाल खुद एक बहुत बड़ा सवाल होगा मेरे ख्याल से कि आंग सान सूची प्रेसिडेंट बनेंगी या नहीं, क्योंकि आर्टिकल 59F जिसके प्रोविजन के तहत आंग सान सूची प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, उसको सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। एनएलडी के लोग बोल रहे हैं कि जो वहाँ के मेजर ज्यूरिस्ट हैं आंको वगैरह, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम सिंपल मेजोरिटी से या 2/3 मेजोरिटी से हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सब अभी स्पेकुलेशन की बातें हैं। आंग सान सूची का कोई सक्सेसर भी अभी डिसाइड नहीं है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक अभी भी एक वहाँ पर स्थिति है कि ये सब्सटैंशियल चेंज है या सिंबॉलिक।
जी संक्षिप्त में बताएं कि जो आंग सान सूची जो फिलहाल संविधान है उसमें क्या ऐसा प्रावधान है जिसके तहत नहीं बन सकती हूँ?
देखिए आर्टिकल 59F जो है उसके तहत प्रोविजन ये है कि कोई भी म्यांमार का नागरिक जिसका शादी बाहर हुई है, किसी फॉरेनर से हुई है, जिसके बच्चे फॉरेन सिटीजन है, वो वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये प्रोविजन है जिसकी वजह से आंग सान सूची को ये दिक्कतें पेश आ रही है।
जी और उल्लेखनीय है कि ये प्रोविजन संविधान में जो वहाँ की सेना है उन्होंने ही डाला था मेरे ख्याल, जो उन्होंने एक नया संविधान बनाया था।
जी बिल्कुल, देखिए इनका जो आप देखेंगे 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, 62 के बाद से तो मिलिट्री का ही राज है वहाँ। 2008 का जो संविधान है उसमें ये बात नहीं लिखी है कि किसी भी आर्टिकल को या किसी भी आर्टिकल के क्लॉज को सस्पेंड कैसे किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस है उसमें चेंजेस कैसे लाए जाए, उसके बारे में ये वेग है। तो ये एक अच्छी बात भी है एनएलडी के लिए और खराब बात ये है कि कोई तरीका नहीं बताया गया है कि व्हाट इज द वे आउट ऑन दिस सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज देखनी होगी।
जी और बस आखिरी सवाल ये डॉक्टर मिश्रा आपसे कि ये वक्त ही बताएगा कि क्या ये एक ऐतिहासिक मोड़ है म्यांमार के इतिहास में या फिर ये सिर्फ एक चिन्हात्मक कदम बनकर रह जाएगा, लेकिन ये बताइए कि क्यों आपके अनुसार जो वहाँ की सेना है वो कम से कम उन्होंने इतना कंसीड किया है कि यहाँ तक वो आ पाए हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव आप कह सकते हैं और भारत की कोई भूमिका रही है?
देखिए निश्चित तौर पर ये जो परिवर्तन हो रहा है म्यांमार में ये आगे आने वाले वक्त में हमें ये साफ तौर पर दिखेगा कि ये एक बहुत बड़ा चेंज है। भले ही आंग सान सूची को सारी पावर या लोकतंत्र को उतनी ताकत नहीं मिलेगी एक बार में, लेकिन ग्रेजुअल चेंजेस होंगे। और जहां तक इस मिलिट्री ने अपने आप से ये सारा चेंज किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है और उसका प्रेशर शायद मुझे लगता है कि काफी काम आया। दूसरे चाइना का भी एक तरह से उनको एक प्रेशर महसूस होने लगा था कि चाइना का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था और मिलिट्री ने शायद इसकी वजह से भी बहुत जल्दी ये चेंजेस कर लिए। इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया एक्चुअली जो जिन डायलॉग्स में भारत अमेरिका और एशियन देशों के बीच में जो डायलॉग हुए उसमें हमेशा भारत ने कहा है, भारत अमेरिका के जो ट्रैक 1.5 और लीडर टॉक्स हैं उसमें भारत ने मुद्दे उठाए हैं। और मुझे लगता है आसियान ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और इसीलिए म्यांमार आज इस स्थिति पे है कि हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र जो बढ़ रहा है।